श्री रामेश्वरनाथ सिन्हा, सिन्हा साहब और बाबूजी, आप सब में से कई लोग जान चुके होंगे कि हम किसकी बात कर रहे हैं। हमारे पूजनीय बाबूजी का आज जन्म दिवस है। उनकी जयंती पर आज उनके परिवार के लोग हमारे स्टूडियो 89.6 एफएम में उपस्थित हैं। श्री रामेश्वरनाथ सिन्हा गांधी विद्यालय नवाबगंज में पहले जूलॉजी के लेक्चरर थे, फिर वहीं के प्रिंसिपल होकर रिटायर हुए। ग्राम नौबस्ता वजीरगंज कोंडा में 40 साल तक प्रधान रहे। माध्यमिक शिक्षा संघ गोंडा के प्रेसिडेंट रहे। कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष थे और साथ ही साथ हमारी सरस्वती देवी नारी ज्ञान स्थली पीजी कॉलेज के सेक्रेटरी थे। पर 2011 में नियति ने बहुत ऑनेस्ट प्रधान, बहुत प्यारे पापा, बहुत लविंग बाबा और नानू, एक डेडिकेटेड टीचर को 9 सितंबर को हम सबसे छीन लिया। आइए सबसे पहले उनकी बड़ी बेटी डॉक्टर आरती श्रीवास्तव से मिलते हैं और जानते हैं वो क्या कहती है।
आपकी कमी खलती है हमें, ये खालीपन दर्द देता है, बस यूं ही यादें दिल में समेटे ये वक्त गुजरता जा रहा है। पापा, आपको गए हुए 12 वर्ष बीत गए, मगर आज भी हमारे मन में पापा की यादें बिल्कुल जिंदा हैं और हम हर साल इसी तरह से 28 जनवरी पे उनको याद करते हैं, बहुत बड़ा मेला करते हैं, हवन करते हैं। तो सबसे पहले हैप्पी बर्थडे टू यू पापा, जिनकी गोद में हमारा बचपन बीता, जिनके हाथ उंगली को पकड़कर हमने चलना सीखा, जिनके साथ हम सबसे पहले बार स्कूल गए। आज वो हमारे बीच नहीं है, हम लोग इतने बड़े हो गए हैं, लेकिन फिर भी हम अनाथ सा फील करते हैं। आज हम तीनों भाई बहन जो कुछ भी हैं, या ग्राम नौबस्ता जो कुछ है, ज्ञानस्थली में जो कुछ भी अचीवमेंट है, या हम हमारे बच्चों ने जो कुछ भी अचीव किया है, उसके पीछे हमारे पापा का बहुत बहुत बड़ा योगदान रहा है। उनका जन्म गाजीपुर में हुआ था, मगर उनके माता पिता गोंडा में थे। उनके पिता एक लॉयर थे और उनकी दो मदर थी। सब बड़ी जब उनकी अपनी मदर की डेथ हो गई तो उनके फादर ने दूसरी शादी किया और उनकी हमारी जो दूसरी दादी थी वो सरयू प्रसाद कन्या पाठशाला में वाइस प्रिंसिपल थी और हिंदी और इतिहास की प्रवक्ता भी थी। हमारे पापा 4 भाई बहनों में सबसे बड़े थे और बहुत ही अच्छे इंसान थे। ही वॉज अ परफेक्ट ह्यूमन बीइंग, एक बहुत अच्छे पापा भी थे। हम लोगों को इतना ज़्यादा प्यार देते थे, छोटी मतलब कभी हम लोग अगर बीमार पड़ जाते थे, हल्का सा बुखार भी होता था, तो पापा हमारे सिरहाने से उठते नहीं थे। रात दिन हम लोगों के पास बैठे, दवा देना, टेम्परेचर लेना, अगर हम लोग का एग्ज़ाम है, रात में हम लोग देर तक पढ़ रहे हैं तो हम लोगों को चाय बना करके देना, ये सब काम हमारे पापा ही करते थे। उनकी वो एक बहुत ही अच्छे मेधावी, 12th तक उन्होंने गोंडा में पढ़ाई किया, उसके बाद इलाहाबाद विश्वविद्यालय चले गए जहाँ पे उन्होंने BSc और MSc किया। फर्स्ट डिविजनर टॉपर रहे, बहुत ही इंटेलेक्चुअल इंसान थे, लेकिन वो अपने ग्रैंडफादर से बहुत ही ज़्यादा प्रभावित थे और ग्रैंडफादर बहुत चाहते थे कि वो गांव से जुड़े रहें। इसीलिए MSc की पढ़ाई उस ज़माने में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से करने के बाद, फर्स्ट क्लास की डिग्री लेने के बाद भी वो गांव वापस आए और अपने खेत की अपनी मिट्टी से जुड़ गए। खेती वो बहुत अच्छी तरह से कर रहे थे, लेकिन अपने इंटेलेक्चुअल सेटिस्फैक्शन के लिए उन्होंने पास में ही नवाबगंज के एक स्कूल में अपना लेक्चरशिप की भी जॉब किया और बाद में वो वहाँ पर प्रिंसिपल हो गए।
वैसे हमारा नाम आनंदिता रजत है। हम पापा के बारे में क्या बताएं, वो गांव के 40 साल प्रधान रहे और आपको बता दें, चाहे वो जिससे भी इलेक्शन लड़े, जिसको भी उन्होंने इलेक्शन हराया, वो लोग भी आज बताएंगे कि ये सड़क जो खड़ंजे लगे हैं वो बाबूजी ने लगाए थे तो इतने मजबूत हैं। ये जो पुल बना है, लोग शान से कहते हैं कि ये बाबूजी ने बनाया था, तो आज 50 साल से ऊपर उस पुल की जो है वो उम्र हो चुकी है, पर फिर भी मजबूत है, उसको कोई तोड़ता नहीं है कि ये बाबूजी ने बनाया था। इतने ऑनेस्ट वो प्रधान थे और कॉलेज में वो बहुत ही अच्छे एक टीचर थे जिसे सब लोग बहुत प्यार करते थे। किसी बच्चे की अगर छोटी सी फीस नहीं, उस ज़माने में तो बहुत सस्ती फीस होती थी, बहुत कम 10 रुपये 11 रुपये वाली फीस थी, कितनों की फीस माफ़ कराई, कितनों को कैसे किस तरीके से किताबों का इंतज़ाम किया, किसी को आगे पढ़ने के लिए भेजा। आज भी उनके पढ़ाए हुए बच्चे जो हैं, स्टूडेंट जो हैं, वो फॉरेन में हैं, रिसर्च कर रहे हैं, क्योंकि उनका एक एग्रीकल्चर कॉलेज था तो एग्रीकल्चर के क्षेत्र में बहुत सारे स्टूडेंट बहुत जगह जगह पे हैं और बहुत सारे जो हैं बहुत अच्छे बड़े नेता बन गए हैं। पंडित सिंह जी भी उनके जो हैं शिष्य रह चुके हैं और वो उनको बहुत दिल से उनका बहुत ही आदर करते थे। जितनी भी बात उनके लिए की जाए उतनी कम है। इतनी सारी बातें हैं उनकी बताने के लिए जो हम लोग शायद बताते रहें तो कई साल बीत जाएंगे। हम दो बहनें हैं और हमारे बीच में हमारा भाई है डॉक्टर दीपेंद्र सिन्हा, जिसको इकलौता बेटा था, फिर भी हमारे पापा ने और हमारी माता जी ने उसको अमेरिका भेजा। आईआईटी खड़गपुर से बीटेक करने के बाद वो अमेरिका चले गए और वहाँ पे उन्होंने पीएचडी किया, उन्होंने एमएस किया और वहीं पे उन्होंने अपनी कंपनी एटीसी लैब्स खोली। इतना सब कुछ था, लोग कहते थे उनसे कि क्यों भाई सिन्हा साहब, क्यों बाबूजी इकलौते लड़के को भेज दिया आपने अमेरिका, पर बोलते थे नहीं, हमारे बेटे की अपनी कुछ इच्छाएं हैं, उसका अपना कुछ करने का है, वो जो करना चाहेगा वो हमारे बच्चे करेंगे, मैं किसी के पैरों में कोई बेड़ियां नहीं डालूंगा। और आज मतलब वो जहां भी होंगे वो शान से कहेंगे कि उनका ये विश्वास उनके इस बेटे को वापस गांव लाया। उसने गांव में 2 फैक्ट्रियां लगाई, एक नौबस्ता इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड की पोल फैक्ट्री और एक एलईडी फैक्ट्री, और कई लोगों को, करीब 200 लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया। तो उनका जो था कि ना रह कर के भी, अमेरिका से जुड़ कर के भी वो गांव के बारे में सोचते थे। एक आर्यन सिन्हा फाउंडेशन भी चल रहा है गांव में, जिसमें कई लोग जो हैं बहुत सारे चैरिटी के काम कर रहे हैं। आपको ये पता है कि उनका 28 जनवरी को उनके नाम से एक सामूहिक हवन का हर साल आयोजन किया जाता है। कई सालों तक उनकी पत्नी यानी हमारी माताजी उस हवन में हम लोग के साथ हिस्सेदार रहीं, पर 2019 में नियति ने हम लोग से उनको भी छीन लिया। अब हम 3 भाई बहन एक दूसरे की जो हैं वो सुख दुख के साथी हैं और उनके बताए हुए रास्तों पे हम लोग चल रहे हैं, कभी हंसी खुशी कभी लड़ झगड़ के, पर हम लोग उनके नाम को आगे बढ़ाना चाहते हैं कि जिस तरीके से जितनी पवित्रता के साथ उन्होंने अपना जीवन जिया उतनी पवित्रता के साथ हम भी उनके जीवन को आगे बढ़ाएं।
अनु, आपने बहुत अच्छी सी बातें बताई, पर थोड़ा सा हम लोग अगर बचपन में लौटें, और आपको याद होगा कि पापा कितने ज़्यादा डोटिंग फादर थे, मतलब कितना ज़्यादा वो हम लोगों के लिए एंग्शियस रहते थे। हमको याद है हम 8th स्टैंडर्ड में थे और डिबेट कंपटीशन में और ऐसे कंपटीशन में फर्स्ट आए थे, मिशन स्कूल में पढ़ते थे, सुल्तानपुर जाना था और पूरी टीम जा रही थी, बड़े भारी मन से पहली बार घर से वो हमको अकेले भेज रहे थे, उन्होंने भेजा। बस में हम बैठ रहे थे, स्कूल की बस थी, और बार बार वो हिदायत पे हिदायत दिए जा रहे थे कि तुम सुल्तानपुर जा रही हो, अकेले मत जाना, खाना ध्यान से खाना, ये यहाँ तक कि मम्मी ने भी कहा अरे वो बड़ी हो गई है सब, अब समझदारी से काम करेगी। वहाँ पे हम लोगों को 5 दिन रहना था और फिर शाम को 5-6 बजे तक वापस आ जाना था, लेकिन लास्ट डे प्रोग्राम बहुत लंबा रहा, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन, कल्चरल प्रोग्राम, ये सब करते करते बहुत लेट हो गया। फिर मैसेज दे दी गई थी प्रिंसिपल को कि पेरेंट्स को बता दिया जाए कि हम लोग को पहुँचते पहुँचते रात के 11:30 बज जाएंगे। सारे पेरेंट्स को प्रिंसिपल ने बता दिया, सब पेरेंट्स निश्चिंत होकर घर चले गए, लेकिन हमारे पापा वहीं चेंबर्स मेमोरियल के आसपास घूमते रहे। बस आई, हम लोग अंदर चले गए, चेंबर्स में एक हॉस्टल भी है तो वहाँ पे खाना वाना खा करके हम सारे लड़कियाँ सेटल हो गए। तब तक हमारा जो चपरासी गेटकीपर था स्कूल का, उसने आके बताया कि आरती जी आपके पापा आए थे पता करने के लिए कि बस आई कि नहीं। और हमने जब कहा कि आपको बुला दे, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं अब तो वो खाना खा रही है, उसको बोलो आराम करे, हम सुबह आके ले लेंगे। तो इतना ज़्यादा वो कंसर्न रहते थे। हमने NCC में कई कैंप किए, चाहे लखनऊ गए, चाहे गोरखपुर गए, दिल्ली गए, हर जगह पापा मम्मी हमारे ज़रूर आते थे। मतलब हम लोगों को, वी आर ब्लेस्ड कि हम लोगों को बहुत बहुत ज़्यादा स्पेशल अटेंशन, और गोंडा जैसी जगह में भी रह करके उन्होंने हम तीनों भाई बहनों को बेस्ट एक्सपोजर दिया। और बहुत सी बातें हैं, अभी तो बातों का सिलसिला चल पड़ा है। अब हमारी छोटी सिस्टर अनु कुछ बताएंगी, फिर
हम दीदी तुमको एक बात बताएं, जब हम BSc में थे तो कुछ दिन के लिए बीमार हो गए, तो कॉलेज नहीं जा पाए थे और हमारी नोट्स छूट गई थी। तो हम किसी की कॉपी लेके आए थे और हमको वो कॉपी करना था, और बहुत सारा काम था, और बड़ा गुस्सा आ रहा था कि इतना बैठ के नोट करना है। तो हमने पापा से बोला, पापा प्लीज़ इसको कॉपी कर दीजिए। और हम BSc में थे, उतने बड़े हो गए थे, फिर भी पापा ने हमारी नोट्स कॉपी की। हमारे सर उस समय अजय श्रीवास्तव सर थे, फिजिक्स पढ़ाते थे, वो हंसते थे, कहते थे वाह क्या पापा तुम्हें मिले हैं बेटा, जो तुम्हारी नोट्स BSc में होके कॉपी करते हैं। तो ऐसी छोटी छोटी बहुत प्यारी प्यारी भी आते
फोटो स्टैट का टाइम नहीं था आपको बता दें, मतलब अपने हाथ से ही कॉपी करना पड़ता था। तो इस वजह से पापा को ने बैठ करके किया, यहाँ तक कि हमारा, हम लोग का कोई डिबेट भी होता था तो पापा ही बैठ करके पॉइंट्स हम लोगों को लिखवाते थे। और कई बार एग्ज़ाम होता था उनको, मतलब थे वो साइंस के, लेकिन सिविक्स वगैरह में भी उनको इतना, पॉलिटिकल साइंस इन सब में इतना इंटरेस्ट था। हम एग्ज़ाम है, बोर्ड का एग्ज़ाम, हम नहा रहे हैं और वो बाथरूम के बाहर बैठ करके फंडामेंटल राइट्स के कौन से अनुच्छेद हैं क्या है वो हम लोग को, हमको रटाते रहते थे। मतलब आजकल ये सब बातें तो मतलब याद आती है तो ऐसा लगता है कि उस समय जब थे तो हम लोग फॉर ग्रांटेड लेते थे शायद अपने पेरेंट्स को, अब लगता है कि कितने प्रेशियस इंसान को हम लोगों ने मिस कर दिया। पर उनका बहुत ही इनोसेंट थे। अनु अगर तुमको याद हो, एक बार ये बहुत छोटी थी और इनके बाल बड़े हो गए, तो इन्होंने सोचा लाओ हम घर में ही काट लें। तो इन्होंने हर तरफ से 2-2 इंच करके नीचे से काटना शुरू किया, पीछे इनका हाथ नहीं पहुंचा। तो ये पापा के पास गई स्केल लेकर के और कैंची लेकर कि पापा 2 इंच आप काट दीजिए। पापा बेचारे हमारे बहुत भोले भाले, वो समझे नहीं, उन्होंने ऊपर से 2 इंच से काट दिया। उसके बाद तो मम्मी उस समय हमारी कॉलेज गई हुई थी, हम लोग भी स्कूल में होंगे, तो इन्होंने इतना रोना धोना, मतलब बचपन से इनका था, फिर तो इनके बाल भी ख़राब हो गए थे, रोने की बात भी थी, खूब रोई, बहुत देर तक बनाते रहे बेचारे। फिर बोले अच्छा लो बेटा मैं अपने भी काट लेता हूँ। उन्होंने अपने भी ऊपर से लेके 2 इंच काट लिए। जब हमारी मम्मी वापस आई तो वो कह रही थी हमको समझ में नहीं आ रहा था कि इन दोनों के ऊपर हम चिल्लाए, गुस्सा करें या पेट पकड़ करके हंसे। तो ऐसे थे हमारे पापा, ऐसा था हम लोग का बचपन।
हम लोग ज़्यादातर, वो हम लोग का बचपन जो है वो गांव में गुजरा है। मतलब कोई भी त्यौहार होता था, चाहे वो होली होती थी चाहे दिवाली होती थी, वो हम लोग को गाँव में ही मनाना होता था। वैसे हम लोग का घर एक गोंडा शहर में भी था जिसमें रहकर हम लोग पढ़ते थे, और पापा यहाँ से मोटरसाइकिल से अपने गांव जाते थे और कॉलेज में यहाँ से करीब 30 किलोमीटर हो जाता था, तो वहाँ पे रोज जो है कॉलेज भी उसी से जाते थे। पर जो भी था कि मतलब था उस समय, वो इतना ज़्यादा पेशेंट था उनके अंदर कि वो ये सब काम करते थे। और हम लोगों को जब गाँव जाना पड़ता था तब बड़ा बुरा लगता था कि अरे होली दिवाली ऐसे अच्छे फेस्टिवल में जब लाइट्स है वो छोड़ करके हम गांव जा रहे हैं। पर आज जब गांव जाते हैं और गांव वालों का वो प्यार मिलता है कि होली में वो जो है बैठ करके चौताल गाना, और दिवाली में पूरा गांव उठ करके जला रहा है, बच्चे आ रहे हैं पटाखे लगाने के लिए आस पड़ोस के गाँव के, तो वो लगता था कि वो कितनी प्यारे जो मोमेंट्स थे। पर हमको तब बुरा लगता था और हम उसको गुस्से में काटते थे दिवाली कि क्यों पापा हमको गांव ले गए, क्यों होली पे हमको गांव जाना पड़ा। पर काश वो समय फिर लौट के आ जाए एक बार।
एक चीज़ जो हमारे पापा मम्मी ने हमेशा हम लोगों को सिखाया, वो कहते थे खूब ऊँचे उड़ो, खूब दूर दूर जाओ, दुनिया भर में नाम कमाओ, पर अपने ज़मीन से ज़रूर जुड़े रहो। सबसे बड़ी चीज जो हमारी मम्मी या पापा दोनों इंसिस्ट करते थे कि तुम्हें प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका से मिलना पड़े या गांव के एक बहुत छोटे से इंसान, तुम उसी प्यार से, उसी इज्जत से, उसी कॉन्फिडेंस से मिलो। कोई भी जगह छोटी बड़ी नहीं है। और दूसरा, हर काम अच्छा है, कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं है। मतलब वो हमेशा ये इंसिस्ट करते थे पापा कि हम लोग हर काम अपने हाथ से करें और में काम करते हैं उन लोगों को भी इज्जत दे। अनु, तुमको याद होगा कि वो विंद्रा था हम लोगों के पास। हम लोगों के पास बहुत साल, बहुत पुराना नौकर था, मतलब करीब 40 साल हम लोगों के पास रहा होगा। और हमको याद है, हम छोटे से थे और जूते की लेस नहीं बांध पा रहे थे, तो हमने उससे कहा कि जूते की लेस बांध दो। तो पापा ने वो उसने मजाक में बोला उसने कि नहीं, हम क्यों बांधे। और हमने कहा, अरे तुम क्यों नहीं बांधोगे, तुम हमारे नौकर हो। आज भी हमको याद है, उन्होंने एक झन्नाटेदार झापड़ मारा था कि तुम्हें, मतलब ये तुम इसके, वो तुम्हारा नहीं, तुम इसके नौकर हो, वो तुमसे इतना बड़ा है। और उस दिन से हम लोगों के यहाँ नियम था कि हम लोग सबको आप कह करके और इज्जत से बोलते थे। तुम कह करके तो बोलने की हिम्मत नहीं थे, हर कोई हम लोगों के परिवार का मेंबर था। और यही कारण था कि हम लोग के घर काम करने वाले हम लोगों से आज तक जुड़े हुए हैं। हमारे सुख दुख, माँ बाप चले गए लेकिन वो सब भी हमारे परिवार जैसे ही हैं।
आज भी याद है, गांव में एक बरगद के नीचे एक जगह थी जहाँ पे बैठ के वो कोहरा तापते थे। कोहरा मतलब आग तापते थे जाड़े के समय। और गांव में बहुत देर तक, रात के 11 बजे तक सब बैठ करके उस पे जो है चटिया जमाते थे कि गप्पे चलती थी, कुछ बातें होती थी। तो वो उनका बहुत ही फेवरेट प्लेस था और बहुत ही बढ़िया पास टाइम था जो गांव में। हम लोग के गांव में लाइट भी बहुत देर से आई है। कच्ची सड़क थी जिसमें बैलगाड़ी से हम लोग बैठ के जाते थे, पर ये नहीं था कि पापा हम लोग को पैदल कह दे कि चले जाओ बेटा या साइकिल पे चले जाओ। नहीं, उनके बच्चे हैं, उनका परिवार है, तो उनको बैलगाड़ी से जो है, बैलगाड़ी क्या, हम लोग की वो डनलप थी, उसको हम लोग जैसे कहो हम लोग का रथ था जिसपे हम लोग शान से बैठ के जाते थे। वहाँ से करीब 4 किलोमीटर पे हम लोग को बस मिलती थी, तब हम लोग उससे जो है गुंडा आते, ये हम लोग का रास्ता था। पर उस जगह पे जब हमारे पिताजी चल बसे, तब हमारी माताजी ने उसी स्थान को पक्का करके जो है ताप कुंड बनवा दिया था हमारे पापा की मेमोरी में। आज भी सब लोग वहीं पे बैठ करके कोहरा तापते हैं। और उनकी सब, जब भी गांव में किसी के पास बैठो तो बाबूजी का एक किस्सा कोई ना कोई सुनाने जरूर आ जाता है कि कैसे किसी की फीस दी, किसी को सब्जी के पैसे दिए, किसी के घर दाल नहीं थी तो दाल दिया। तो ऐसे छोटे छोटे अनगिनत किस्से हैं।
गांव में या गांव वालों में तो उनकी जान बचती थी। एक किस्सा यह बताया कि एक बार क्या, हमारे गांव में एक झील है, कोंडर झील, तो उसके उस पार भी गांव है। और उस तरह एक किसी घर में आग लग गई, और जब आग लगी, पापा इस तरफ खड़े हुए थे, उन्होंने देखा और बिना कुछ सोचे समझे वो उस झील में कूद गए। उन्होंने उसको क्रॉस किया, वहाँ आग बुझाने में मदद किया। दूसरे दिन उनसे जो बन पड़ा, अनाज, कपड़े, खाना, सब कुछ भेजा। इस तरह से वो हर किसी की मदद करते थे। हमारे घर के सामने एक छोटा सा मंदिर है जहाँ पे एक बूढ़े से मल्लू बाबा रहते थे। वो हम लोग को बहुत प्यार करते थे, पर बाद में वो बहुत बीमार पड़ गए। उनका परिवार का कोई नहीं था और होगा भी तो कोई आता नहीं था उनको देखने के लिए। तो उनके हाथ में, पैरों में कीड़े पड़ गए, कोई उनके पास नहीं जाता था। पापा बहुत पेशेंटली जाते थे, उनके डेटॉल से साफ करते थे, धीरे धीरे सारे कीड़े निकालने की कोशिश करते थे, स्पॉन्जिंग करते थे, हाथ से खाना खिलाते थे। ऐसा था उनका सेवा भाव और वही वो चाहते थे कि उनके बच्चों में भी इनकलकेट हो।
जो भी, जितनी भी बात कहें, सबको ये लग रहा होगा कि अरे ये हम लोग क्या बता रहे हैं, ये तो पिक्चर स्टाइल है। पर फैक्ट यही था कि वो पापा, जैसे कहो एक गरीबों का मसीहा, अपनों का बहुत प्यार करने वाला, एक ऐसा इंसान, एक ऐसे पर्सन थे वो कि जितनी भी उनकी तारीफ की जाए, जितनी भी उनकी बातें बताई जाए, वो कम है। पापा क्या, हमारी मम्मी भी उतनी ही अच्छी, उतनी ही प्यारी चीज थी। डॉक्टर कृष्णा सिन्हा, जिन्होंने ये सरस्वती देवी नारी ज्ञान स्थली पीजी कॉलेज की स्थापना की थी, शुरू की थी। पापा मम्मी ये कॉलेज चलाती थी, बहुत अच्छे से चलाती थी। पापा कभी इसमें इंटरफेयर नहीं करते थे, पर हाँ कभी कोई कंस्ट्रक्शन होता था या कुछ होता था तो वो आकर के उसको ज़रूर देखते थे कि कोई सीमेंट ठीक मिला रहा है, कितना काम कैसे हो रहा है, ये चीज़ों पे जरूर ध्यान देते थे। पर वो मम्मी को उन्होंने एक उस टाइम में भी ये फ्रीडम दे के रखी थी कि अगर तुम कुछ करना चाहती हो तो बिल्कुल अपने से करो, तुम्हारा ना हो उसमें कोई इंटरफेरेंस उनका नहीं रहता था। ये बहुत ही बड़ी बात थी। मतलब पापा थे तो हम लोग क्या, हमारे बच्चों ने भी उनके साथ कभी वो क्रिकेट खेल रहे होते थे, कभी वो गिल्ली डंडा भी खेला है हम लोगों ने उनके साथ।
गिल्ली डंडा तो हमको अभी भी याद है, और वो सात पत्थर रखकर
वो तो
बहुत ही खेलते थे हम,
बहुत खेलते थे। गांव में उन्होंने वो बनवाया हुआ था, बैडमिंटन का कोर्ट बनवाया था, एक टेबल टेनिस था गांव में जिसको हम लोग खेलते थे। मतलब
उन्होंने गांव में भी हम लोग को रखा, पर बेस्ट देने की कोशिश हमारे पेरेंट्स ने हम लोग को बेस्ट एक्सपोजर दिया, जिसकी वजह से हम लोगों का कॉन्फिडेंस लेवल हमेशा बहुत अच्छा रहा। पापा को घूमने फिरने का भी बहुत शौक था, किसी पार्क में जाते थे तो भी बहुत खुश होते थे, अमेरिका गए वहाँ पे भी बहुत खुश हुए, एक एक चीज़ बहुत ध्यान से देखते थे, स्पेशली वहाँ की जलवायु कैसी है, वहाँ के पेड़ पौधे कैसे हैं, इन सब चीज़ों को वो बहुत ध्यान से माइन्यूटली वो करते थे और कोशिश करते थे वहाँ पे से बीज वगैरह लेकर के आए। वो इनको इतना अपने गाँव से प्यार था, इतना ज़्यादा वो रच पस गए थे उस गाँव में कि जब उनका अंत समय आया, उनका ब्रेन ट्यूमर हो गया, और उस समय याद है अनु कि उनको एक तरह से पता ही चल गया था कि अब वो नहीं रहेंगे। हमारा भाई अमेरिका में था, लेकिन उसने जी जान से सेवा कर दी, हर महीने आया पापा को। मतलब एक होता है सिर्फ पैसा खर्च करना, एक होता है दिन रात एक करके उनकी सेवा करना। तो एक दिन डिस्चार्ज होके भैया के दिल्ली वाले घर में हम लोग सब लोग बैठे थे, और पापा ने बोला, देखो तुमने अमेरिका में तो बहुत नाम कमाया है, लेकिन हम तुम्हें तभी मानेंगे जब तुम हमारे मंदिर को अमेरिकी प्रसिद्धि अपने अमेरिका तक पहुंचा दोगे। वो बात उसको इतनी दिल से छू गई कि पापा के जाने के बाद उसने गांव, जो 13 गांव थे जिसके पापा प्रधान रहे थे, उनको एडॉप्ट किया, उसको इलेक्ट्रिफाई किया, फैक्ट्री लगाई, मेला लगाया, मेडिकल हेल्प दिया, और आज दिन रात, मतलब कई बार होता है कि गांव वाले ये भी नहीं सोचते कि वहाँ पे रात होगी कि दिन होगा, और फ़ोन कर देते हैं, और वो उतनी ही सिंसियरिटी से उनका फ़ोन अटेंड करता है और हर किसी की प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करता है। इसके कारण यही है कि पापा ने उसको एक रास्ता दिखाया कि तुम जहाँ पे भी गए हो, पर तुम्हारी जड़ें इसी गांव से, इसी प्रयागपुर से जुड़ी है, और तुम्हें तुम सबको लौट के आना है। तो पापा के बारे में तो जितना कहे उतना ही कम है अनु, शायद।
हाँ, सही में तो सब लोग जो हैं, एक आप लोग से वो है कि 28 जनवरी को हर साल उनके गांव, उनके पैतृक निवास स्थान पर, जो कि प्रयागपुर नौबस्ता वजीरगंज ब्लॉक में आता है, में हर साल सामूहिक हवन का आयोजन किया जाता है। आज भी उसका आयोजन है, अभी थोड़ी देर में उसका जो है आरंभ होगा। तो अगर आप लोग हैं कहीं पे, हम लोग की आवाज़ सुन रहे हैं, तो आइए उस हवन का एक हिस्सा बनिए। और एक बात बताएं कि हम लोग के, हम तीनों भाई बहनों के 5 बच्चे हैं, सब मतलब 5 ग्रैंड चिल्ड्रन हैं हमारे पेरेंट्स के, और 5ों ग्रैंड चिल्ड्रन के लिए, जब मतलब हमारे भाई के 2 बच्चे अमेरिका में थे, जब वो लोग आते थे तो गाँव का जो आंगन होता था, बहुत बड़ा सा आंगन था, उसमें सरसों के जो है वो बिछा दी जाती थी कि बच्चे उसमें खेलेंगे, कूदेंगे, लड़ेंगे, झगड़ेंगे। तो हमारे साथ हमारी जो है एक ग्रैंड डॉटर हमारे पापा की, अंकिता श्रीवास्तव प्रेजेंट है यहाँ पे इस समय। ये इस समय डेलॉयट लंदन में जो है वो
जॉब कर रही है।
क्या जॉब कर रही है भाई, अब आप खुद ही बताइए और कुछ बातें हम लोग से शेयर कीजिए।
मैं आर्यन सिन्हा की नाथिन बोल रही हूँ. मेरा नाम अंकिता है और मैं डेलॉइट में काम करती हूँ लंदन में. हम जिंदगी में कई लोगों से मिलते हैं, बट कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आप पे एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट छोड़ के चले जाते हैं. वैसे ही थे मेरे नानू. बहुत लविंग, केयरिंग एंड वेरी वेरी काइंड. आप इनसे एक बार मिल लोगे तो सदियों सदियों तक आप इनको कभी भूल नहीं पाओगे. जैसे आप सबको पता है उनका आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे नानू. वी रियली मिस यू अ लॉट. लोग कहते हैं कि आप हमारे साथ नहीं है, पर एक भी
आई डोंट ट्राई.
हाँ ठीक है, वो है हम लोग के साथ.
बट ऑनेस्टली नानू, एक भी दिन आई थिंक ऐसा नहीं गया होगा जब हमने आपको फील नहीं किया है. एंड हमें पता है यू ऑलवेज बीन अराउंड. लाइफ में बहुत प्रॉब्लम आई नानू, पर पता नहीं कैसे वो आज सब सॉल्व हो गई एंड हम सब यहाँ बैठे हैं हंस रहे हैं. एंड आई थिंक दैट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ यू नानू. जैसे माँ और मासी ने बताया आप हमारा ख्याल रखते थे, वैसे ही शायद आप जाने के बाद भी यू ऑलवेज देयर एज अ गार्जियन एंजल. शायद आपके रहते हुए हम कभी बोल ही नहीं पाए नानू, बट थैंक यू सो सो मच फॉर एवरीथिंग नानू. आपने जो किया है वो शायद कोई नहीं कर पाता नानू, और उससे भी ज़्यादा थैंक यू फॉर गिविंग मी सच अ लवली फैमिली. इतना सुंदर परिवार आपने दिया नानू की. भले ही लोग कहते हैं कि आप हमारे साथ नहीं है नानू, बट वी नो यू आर राइट नेक्स्ट टू अस. एंड आई रियली होप कि हम सब ने आपको बहुत प्राउड किया हो. एंड बस एक चीज कहना चाहती हूँ नानू, वी रियली लव यू अ लॉट. एंड बस आप ही हमारे नानू रहना हमेशा. एंड वी मिस यू.
तो बिटिया रानी ने हम सबको इमोशनल कर दिया बहुत ज़्यादा. जो है आप जहाँ भी हैं, आप और मम्मी हमेशा हम लोग के साथ हैं, और हम लोग चाहेंगे कि जैसे जितने नोबेल इंसान आप लोग थे, वैसे ही हम बच्चे और हमारे बच्चे और उसके आगे की जनरेशन वैसी ही प्यारी बनी रहे, वैसे ही लोगों के बारे में सोचे. थैंक यू सो.
अंत हम महादेवी वर्मा जी की कुछ लाइनों से करना चाहेंगे, जो कि बहुत ही एप्ट है. प्रतीक्षा तो यूं ही करुण होती है, लेकिन जब वह किसी ऐसे के लिए की जाती है जिसका लौटना असंभव है, तब वो करुणतम होती है. आपका लौटना असंभव है, लेकिन आप हमारे साथ हैं, और हम लोग यही चाहेंगे कि हर जन्म में आप ही और मम्मी हमारे पेरेंट्स रहें, और हम लोग को हमेशा गाइड करते रहें. कभी अगर हम लोग गलत जाएं, तो प्लीज़ कुछ ऐसा साइन दे दीजिएगा कि हम लोग को लगे कि हम कहीं किसी के साथ गलत कर रहे हैं या ज़िंदगी में कोई गलत काम कर रहे हैं, ताकि हम उसको सुधार के आप लोगों के दिखाए हुए रास्ते पे चल सकें. हैप्पी बर्थडे वंस अगेन पापा.
नमस्कार, आदाब, प्रणाम. मैं डॉक्टर कर्नल विकास श्रीवास्तव, जो मिस्टर आर एन सिन्हा की बेटी से हमारा विवाह हुआ है और उनके हम बड़े दामाद हैं, आज उन्हीं के जन्म तिथि पर हम लोग आपको उनके बारे में कुछ रूबरू कराना चाहते हैं. जो फैक्ट हमने देखा है उनकी ज़िंदगी का, वो बड़े कर्मठ और कर्मयोगी पे पूरा विश्वास रखते थे. उनका कहना था कि कर्म करो, कर्म करने से ही फल मिलता है. उन्होंने जीवन भर जो है देश की सेवा के साथ साथ अपने गांव का उत्थान किया, और यहां पे गोंडा ज़िले में सब में जो है अवेयरनेस बताई कि कर्म योगी बनने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए, आदमी को कितना कर्मठ होना चाहिए. उन्हीं के आज के दिन बहुत याद आ रही है, जिसको कि हम चंद शब्दों में बयां करना चाहते हैं कि कैसे कल तक वो हमारे साथ थे और आज नहीं है. ये चंद पंक्षियां गाना ही है, उसको मैं सुनाता हूँ. चिट्ठी न कोई संदेह, ओ चिट्ठी न कोई संदेह, जाने वो कौन सा देश कहाँ तुम चले गए, चिट्ठी न कोई संदेह, जाने वो कौन सा दे जहाँ तुम चले गए, चिट्ठी न कोई संदेह, जाने वो कौन सा दे कहाँ तुम चले गए, कहाँ तुम चले गए, इस दिल को लगा के ठेस, जाने वो कौन सा दे जहाँ तुम चले गए। जी हाँ, वो हम लोग के बीच नहीं रहे, लेकिन उनकी यादें, उनके कर्मठ विचार, उनका काम करने की इच्छा शक्ति और लोगों की सेवा करना, वो आज भी हम लोग के बीच गूंजता है। उसके सुपुत्र मिस्टर दीपेंद्र सिन्हा और उनकी दो पुत्रियाँ श्रीमती आरती सिन्हा एंड श्रीमती अनुनंदिता सिन्हा, ये लोग आज भी उनके चलाए हुए मार्ग पर चल रहे हैं और देश और विदेश में बैठने के बाद भी जो है अपने गांव को नहीं भूले, क्योंकि बाबूजी की इच्छा थी कि उनका गांव हमेशा उनके साथ रहे और वो कभी किसी समय से ओझल ना हो। तो चाहे अमेरिका हो, चाहे विदेश का कोई कोना हो, सारे भाई बहन यहाँ पे आते हैं और जो है सब लोग मिलकर उनकी याद में आज की तिथि को मनाते हैं। और ये एक बहुत बड़ी चीज़ है कि किसी को याद रखना, आदमी आता है चला जाता है, उसके कर्मों से याद किया जाता है, इसीलिए वो कर्मठ और कर्मवीर कहलाते थे। इन शब्दों के साथ अब मैं आप लोग से विदा लेता हूँ, धन्यवाद।
मैं डॉक्टर ए एस सिंह, श्री रामेश्वरनाथ सिन्हा का छोटा दामाद हूँ। उनकी छोटी बेटी आनंदिता रेयस से मेरी शादी हुई है। पापा को मैंने हमेशा लोगों के लिए काम करते देखा, लोगों के लिए मदद करते देखा, गांव हो शहर हो उसकी कोई लिमिट नहीं थी। मैं उन्हें हमेशा, मेरे लिए वो हमेशा मेरे रक्षक बन के आए, चाहे मेरा दिल्ली में एक कोर्ट केस था, मैं बहुत घबरा रहा था, उन्होंने सारा रास्ता निकाला। मुझे एक बार बेहोशी आई थी, मेरा सीटी स्कैन कराने, वो वहीं बैठे रहे कि मुझे कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है। मेरे हाथ में फ्रैक्चर हुआ, कर्फ्यू में वो किस तरह मेरे घर पहुंचे, मेरा एक्सरे कराया, मेरा प्लास्टर कराया, मैं कोमा में गया, वो दिन रात ज़मीन पे बैठे रहे जब होश में नहीं आ गया। आज भी जब समस्याएं हैं तो मैं उन्हें बहुत याद करता हूँ, क्योंकि अब उन जैसा कोई प्रोडक्टिव मैन मेरे लिए नहीं है, मेरे ही क्या मेरे परिवार के लिए नहीं। इन्हीं शब्दों से मैं विदा लेता हूँ। पापा आप जहाँ रहें खुश रहें, आपकी बहुत याद आती है।
हेलो, हमारा नाम डॉक्टर दीपेंद्र सिन्हा है और हम आज बात कर रहे हैं श्री रामेश्वरनाथ सिन्हा जी की रिमार्केबल जीवन यात्रा के बारे में। आज पापा का जन्म दिवस है, उनकी जन्म एनिवर्सरी है और हम पूरी तरह से उनकी याद में डूबे हुए हैं, लेकिन बताना चाहेंगे कि उनका जीवन एक ऐसा जीवन था जिसका इम्पैक्ट, उसका जो प्रभाव था, न केवल वो उनके अपने जीवन काल में रहा, लेकिन उन्होंने जो एक पौधा बोया उसका प्रभाव, उसके प्रभाव से जो ठोस इम्प्रूवमेंट लोगों की लाइफ में हुआ है वो दशकों तक चलता रहेगा। आपको बताते हैं कि श्री रामेश्वरनाथ सिन्हा जी एक बहुत ही मेधावी छात्र थे। वो अपने समय में, ये 1950s की बात है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में गए और वहाँ से उन्होंने जूलॉजी में MSc किया। जैसा कि शायद आप जानते ही हैं, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी उस समय देश की टॉप यूनिवर्सिटीज़ में से माने जाती थी और वो वहाँ पर गोल्ड मेडलिस्ट थे और उस समय वो कहीं पर भी जाकर बहुत सक्सेसफुल हो सकते थे, लेकिन उन्होंने निर्णय किया कि वो आकर यहाँ अपने गाँव में जो यहाँ गोंडा शहर से 20 किलोमीटर दूरी पर है, वहाँ पर सेटल होंगे और गांव में कुछ ठोस परिवर्तन का प्रयास करेंगे। याद रहे कि उन दिनों गांव की हालत और भी खराब थी, कमजोर वर्गों और दलितों का शोषण चरम सीमा पर था, बॉन्डेड लेबर बंधुआ मजदूरों की समस्या चरम सीमा पर थी, भू माफिया अत्यधिक सक्रिय था, और उन सबके बीच में उन्होंने जो अपने पर्सनालिटी, अपनी एजुकेशन, अपनी प्रतिभा के बल पर जो लड़ाई लड़ी, उसने उस गांव में और आसपास के क्षेत्रों में बहुत ही ठोस परिवर्तन, लोगों की सोच में बहुत ही ठोस परिवर्तन पैदा किया। अपनी रूट्स से जुड़े रहने के अलावा पापा के तीन और मेन कोर सिद्धांत थे। एक तो वो मनुष्य की समता में 100% विश्वास करते थे। समाज की जो बुराइयां जैसे कि जात पात, ऊंच नीच की भावना, वो इन सब से बिल्कुल ही ऊपर थे। जो भी उनके पास आया उन्होंने उसका एक ही प्रकार से सम्मान किया, कभी भी मन में कोई भेदभाव की भावना रखी ही नहीं और सबको गले लगाया। स्पेशली अगर कोई कमजोर व्यक्ति जिसका शोषण की संभावना है ऐसा कोई उन्हें मिला तो उन्होंने अपनी क्षमता से ज्यादा उसकी मदद करने की कोशिश की। एक दूसरा उनका सिद्धांत था कि वो कर्मयोगी थे, किसी भी काम को ऊपर नीचा नहीं समझते थे। उन्होंने अपने हाथों से खेती की, अपने हाथों से बच्चों की चिकित्सा की, अपने हाथों से बच्चों को शिक्षा दी, और कोई भी काम करने से, चाहे घर का कोई काम हो चाहे कुकिंग का काम हो, कभी भी किसी चीज से पीछे नहीं हटे। एक तीसरा उनका ये कोर सिद्धांत था कि वो स्किल पर बहुत विश्वास करते थे। उनका ये मानना था कि व्यक्ति जीवन के किसी भी स्तर पर हो, कहीं पर भी हो, किसी भी उम्र का हो, लेकिन उसे हमेशा अपने हुनर को, अपने हाथों को, सफाई को बढ़ाते रहने का प्रयास करते रहना चाहिए। और यही शिक्षा उन्होंने जो भी युवक गांव के आसपास उनके साथ इन्वॉल्व हुए उनको ये प्रेरणा दी। वो अपने जीवन में आगे चलकर उन्होंने एक सेकेंड डिग्री की लॉ की, जिससे कि वो कानूनी सलाह गाँव के लोगों को दे सकें। चिकित्सा के और इंजीनियरिंग के क्षेत्रों के कितने ही विषयों के बारे में उन्होंने अपने आप से सीखा जीवन के अलग अलग उम्र पर जाकर, जिससे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद कर सके और अपनी स्किल को हमेशा इम्प्रूव करते रह सके। इसलिए आज पापा रामेश्वरनाथ सिन्हा जी के जन्मदिवस पर हम एक बार फिर उन्हें याद करते हैं और उन्हें अश्योर करते हैं कि पापा, आप और मम्मी हमारे बीच आप नहीं हैं, लेकिन प्लीज़ रेस्ट इन पीस। आपने जो वैल्यूज़ अपने परिवार को और सैकड़ों हजारों लोग जिनको आपने हेल्प किया, जो आपके प्रभाव में आए, उनको जो वैल्यूज़ दी, अपने रूट से जुड़े रहने की, अपनी जड़ से जुड़े रहने की, समता की, कर्मयोग की, हुनर को बढ़ाने की, वो भावना आगे ही बढ़ेगी और आपका जीवन हमेशा हम सब के लिए एक ब्लूप्रिंट रहेगा, एक प्रेरणा का स्रोत रहेगा कि अपना जीवन उसी प्रकार से, उसी भाव के साथ जिएं।